हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयुष्मान ने झूठी मुस्कान लबों पर सजाकर बालकनी की ओर बढ़ा। बालकनी में प्रीति ने अपने बेटे को दूध पिलाया था और वो आधे में ही सो गया था। प्रीति उसे वापस उसके बिस्तर पर सुला ही रही थी कि बालकनी का दरवाजा खुला और प्रीति की नजर उस ओर घूम गई। मम्मी जी से बात हो गई आपकी, कब आ रही हैं वो? प्रीति ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाए आयुष्मान को देखते हुए जवाब का इंतजार किया। आयुष्मान को उसका सवाल सुनकर गरिमा जी से हुई बात याद आ गई। एक पल को उसके चेहरे पर उदासी और पीड़ा के भाव उभरे, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ते हुए गंभीरता से बोला, मामी नहीं आ सकेंगी, कुछ काम है उन्हें वहां, अभी नहीं कुछ दिन बाद आएंगी वो। इसलिए मैं सोच रहा था कि या तो मैं ही घर से काम करना शुरू कर देता हूँ या फुल टाइम मेड लगा लेते हैं। आयुष्मान ने प्रीति को दो विकल्प दिए। उसकी बात खत्म होते ही प्रीति ने झट से इनकार करते हुए कहा, नहीं, कोई मेड रखने की जरूरत नहीं है, पहले ही हॉस्पिटल में मेरे पीछे इतने पैसे लग गए आपके, अब बच्चा हो गया है तो खर्च भी बढ़ जाएगा, फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए हमें। अगर आप घर से काम कर सकें तो ठीक है, वरना मैं संभाल लूंगी इसे अकेले। अकेले नहीं, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, हम मिलकर ध्यान रख लेंगे हमारे बच्चे का। मैं सर से बात कर लूंगा और उनसे परमिशन लेकर कम से कम एक महीने तो घर से ही काम करूंगा, तब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। प्रीति ने मुस्कुराकर सहमति में सर हिला दिया। आयुष्मान जिस तरह उसकी और बच्चे की परवाह करता था, प्रीति का मन खुशी से भर उठा। उसकी बातें उसके दिल को गुदगुदा जाती थीं, उसे अनेकों मीठे मीठे एहसासों से भर देती थीं। आयुष्मान ने प्रीति को सच नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि सच जानकर प्रीति को बहुत दुख होगा और वो उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्रीति से झूठ कहना ही ठीक समझा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि ये परिवार उसका अपना है, प्रीति और बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, उनके लिए जो करना होगा खुद करेगा, क्योंकि उनका ध्यान रखना उसका फर्ज था, किसी और का नहीं। आगे का आधा दिन बच्चे के साथ कैसे गुजरा उन्हें मालूम ही नहीं चला। आयुष्मान ने मिस्टर दीक्षित से बात की तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से उसे परमिशन दे दी। शाम का वक्त था, प्रीति बाथरूम में थी और बेबी के गंदे कपड़े धो रही थी। आयुष्मान हॉल में उसे अपनी गोद में लिए बैठा था। बच्चा सो रहा था पर बिस्तर पर रखते ही रोने लगता, इसलिए आयुष्मान उसे अपनी गोद में लेकर बैठा था। उस वक्त उनके फ्लैट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ही उस सन्नाटे में डोरबेल की आवाज गूंजी। आंटी होंगी, ये सोचते हुए आयुष्मान बच्चे को गोद में लिए हुए ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते हुए उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव उभर आए। आयुष्मान को लगा था कि आंटी आई होंगी, पर सामने आंटी नहीं बल्कि दादी, जसमीत और उनके साथ गुरमीत खड़ा था। जहां तीनों को अचानक यहां देखकर आयुष्मान हैरान था, वहीं गुरमीत को सामने देखकर आयुष्मान की आंखों के सामने वो पल घूम गया जब गुरमीत ने बच्चे को बालकनी से बाहर करते हुए गिराने की बात कही थी। वो पल याद आते ही आयुष्मान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर उसकी गोद में बच्चा सो रहा था और सामने दादी खड़ी थी, इसलिए आयुष्मान ने किसी तरह अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। गुरमीत ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। आयुष्मान ने बेरुखी और नफरत से उस पर निगाहें फेर ली, फिर दादी को देखकर बोला, दादी आप अचानक यहां? आप तो सबसे नाराज होकर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहाँ चले आए, और उसमें गलती आपकी नहीं, पर हमें तो अपनी बहू और पोते के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ आए हैं, और अगर आप हमें इजाजत दें तो कुछ दिन हम यहीं ठहरने के इच्छुक हैं। आयुष्मान उनकी बात सुनकर तुरंत ही बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप दादी, आपको यहाँ रहने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, ये आपका ही घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं, जितने दिन चाहें यहाँ ठहर सकती हैं, पर सिर्फ आप। आखिरी की बात कहते हुए आयुष्मान ने तिरछी नजरों से गुरमीत को घूरा। उसकी बात सुनकर गुरमीत तो शर्मिंदगी से कुछ बोल ना सका, पर जसमीत ने तुरंत ही कहा, भैया हम यहाँ ठहरने नहीं आए हैं, बस आपसे और भाभी से कुछ बात करनी है, उसके बाद हम चले जाएंगे। आयुष्मान को जसमीत से कोई नाराजगी नहीं थी, उसने सर हिला दिया और सामने से हटते हुए प्रीति को आवाज लगाई, प्रीति बाहर आ जाओ, दादी आई हैं। दादी के आने की खबर सुनकर प्रीति पहले तो चौंक गई, फिर उसने जल्दी से अपने हाथ धोए और दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए ड्राइंग रूम में पहुंची। वो दादी से मिलने को खुश थी,
पर जैसे ही उसकी नजर दादी के पास खड़े जसमीत और गुरमीत पर पड़ी, उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और वो आश्चर्य से आयुष्मान को देखने लगी। आयुष्मान ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया तो प्रीति ने आगे बढ़कर दादी के पैर छूने के लिए झुकने लगी, पर दादी ने उसे रोक लिया। ऑपरेशन के कारण अभी उसे झुकने में तकलीफ होती थी तो दादी ने ऐसे ही उसके सर पर हाथ रख दिया, उसे आशीर्वाद दिया। फिर जसमीत प्रीति के पास चली आई और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझसे भी नाराज हो पर जाई। प्रीति ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाया और उसे गले से लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं, तुमसे कैसी नाराजगी, तुमने तो कोई गलती नहीं की, उल्टा तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, हमें हमारा बेटा सही सलामत लौटाया है और तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। तुम कभी गलत नहीं थी और मैं दूसरों के गुनाहों की सजा किसी निर्दोष को देने में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। प्रीति की बातों का मतलब हर कोई समझ रहा था। जसमीत पलटकर उसकी बात का कोई जवाब ना दे सकी। जैसे ही वो प्रीति से अलग हुई, गुरमीत उसके सामने आ खड़ा हुआ और पश्चाताप के आंसू आंखों में भरते हुए बोला,